नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्फू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ तथा सुदृढ़ बनाने पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र पिपर हवा अवशेषों के सामने प्रार्थना की। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 1020 मेगावाट की पुनात सांगचु द्वितीय जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। उनकी उपस्थिति में द्विपक्षीय सहयोग और सुदृढ़ बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी हुए। इस अवसर पर भारत ने ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भूटान को 4000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण सहायता की घोषणा की। भूटान में अब तक भारत के सहयोग से 5 जलविद्युत परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात भूटान नरेश द्वारा आयोजित शाही भोज में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह भूटान के राष्ट्रपिता वहां के चौथे नरेश ड्रुक ग्यालपो जिग्मे सिंगये वांगचुक के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री भारत लौटने से पहले तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख आध्यात्मिक आयोजन कालचक्र समारोह में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक ने कल द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। भूटान नरेश ने दिल्ली विस्फोट की घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने भी दिल्ली में लाल किले के पास हुई घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने घायल पीड़ितों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली विस्फोट की घटना में शामिल सभी लोगों को जांच एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गृहमंत्री ने कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। इस बीच गृह मंत्रालय ने घटना की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA को सौंप दी है। घटना के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बृहस्पतिवार तक यात्रियों के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से चालू हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका यात्रा के दूसरे चरण में बोत्सवाना पहुंच गई हैं। वे 13 नवंबर तक बोत्सवाना की राजकीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज कनाडा की विदेश मंत्री सुश्री अनीता आनंद के निमंत्रण पर G7 विदेश मंत्रियों की आउटरीच पार्टनर्स के साथ बैठक में कनाडा के ओंटारियो का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि डॉ जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चरण में 69% से अधिक मतदान हुआ। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों के लिए मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। देशभर में हवाई अड्डों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इंडिगो विमानन कंपनी ने यात्रियों को परामर्श जारी कर उनसे प्रवेश जांच, सुरक्षा जांच और चेक इन प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय देने के लिए हवाई अड्डों पर जल्दी पहुंचने को कहा है। एयरलाइन ने कहा कि नियामक आवश्यकता अनुरूप यात्रियों को विमान में सवार होने से पहले अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ सकता है। भारत ने ब्राजील के बेलम में आयोजित 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 में समता, जलवायु न्याय और बहुपक्षवाद की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय प्रतिनिधि ने अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 स्पर्धा में भारत ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए पदक हासिल किए हैं। सम्राट राणा ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीते। 2 पदक के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 11 हो गई है, जिनमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।